SBS रेडियो पर मैं हूँ आपके साथ अनीता परार। आज हमारे साथ जुड़े हैं संगीत और नृत्य की विधाओं के दो कलाकार, कल्पना राजा और शिखा शंगानी। मेलबर्न में 3 नवंबर को एक नृत्य नाटिका हो रही है जिसमें ये दोनों ही कलाकार अपनी अपनी विधाओं की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। संगीत में नृत्य नाटिका है अभंग राम, जो रामायण पर आधारित है। शिखा जी, कल्पना जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिखा जी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो कथक की उत्पत्ति है वो उत्तर भारत से हुई है और कोई 2000 वर्ष पुरानी ये नृत्य पद्धति है, और कथाकार कथाओं और कहानियों को आगे बढ़ाने की एक विधा है। तो कथक के प्रतीक की बात करें तो ऐसा क्या उसमें अनोखापन है, क्या इसको दूसरी डांस फॉर्म से अलग करता है?
दूसरी डांस फॉर्म से बहुत कुछ अलग नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि शिव की जटाओं से निकली गंगा चारों तरफ बिखरी, और कुछ मोतियों के नाम अलकनंदा पड़े, कुछों के गंगा पड़े, अलग अलग नाम हो गए। कथक, जैसा आपने कहा, बहुत पुरानी विद्या है। पुराने ज़माने में टीवी और कुछ तो हुआ करता नहीं था, एंटरटेनमेंट का साधन क्या था
जी।
हम गांव कूचों में अगर जाते हैं और पुराने दादा दादाजी से सबसे जब हम कहानियां सुनते हैं तो कहते हैं, एक शाम हम सब बैठ जाया करते थे, कोई ढोलकी ले आता था, कोई मंजीरा ले आता था, और हम क्या करते थे, हम रसमय गीत को सुनकर कहानियाँ कहा करते थे।
बिल्कुल,
जैसे लव कुश ने स्वयं राम के राज्य में आकर उनके महल में उन्हीं की कहानी गा के बजा के सुनाई, तो लवकुश हुए पहले कथाकार
जी।
सो कथा कहे सो कथक कहलाए।
हाँ,
बिना बहुत ज्यादा कुछ उसमें 3-5 नहीं किया, एक्सप्रेशंस को यूज कर लिया, हैंड जेस्चर्स को यूज कर लिया कि भाई वहां से यहाँ आए थे, वो हाथों से बता दिया, आंखों से बता दिया, और इस प्रकार इस जो कहानी कही जा रही है उसे एक्सप्रेशन से, हाथों से लोगों तक बड़े आराम से पहुंचा दिया, उससे याद अच्छा हुआ, और ऐसे ही ये कहानियां नीचे उतरती 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 अब हम तक भी पहुंच गई। हाँ, कुछ बदलाव हुए
जी,
कुछ अच्छे के लिए हुए, कुछ नहीं बहुत अच्छे हुए, पर हुए, लेकिन ये धरोहर जो हमने वहां से चलती आ रही है उसको खींच के मुट्ठी में बंद किया, और अभंग राम के द्वारा वही धरोहर हम सामने लेकर आना चाह रहे हैं।
आप यहाँ सामने जी, और कल्पना जी, अगर आपकी बात करूं तो आप कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई हैं और ये कथक उत्तर भारत से, आप दक्षिण भारत कर्नाटक संगीत, तो ये जो मिलाप हुआ है अभंग राम में, आपके लिए कितना मुश्किल रहा अपनी शैली से हटकर हिंदुस्तानी संगीत की शैली को अपनाना, आपसे जानना चाहूँगी।
नमस्कार जी। पहले तो धन्यवाद हम दोनों को यहाँ एक मंच प्रस्तुत करने के लिए, हमारी हमारी आर्ट को आपके साथ शेयर करने के लिए। इसका जवाब मैं यही दूंगी कि इन्होंने जहाँ से शुरू किया हम भी वही करना चाहते हैं, हम भी वही कथा सुनाना चाहते हैं। हालांकि हमारी जो हमारा जो तरीका है वो अलग है, बट सात सुर तो वही हैं
जी।
तो हमारी कर्नाटकी शैली की गायकी है, हाँ, बट हमारी भी जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग है और हमें तैयार करता है बचपन से, अगर हमने बचपन से इसकी यू नो सीख ली है तो हम तैयार हो जाते हैं बाय द टाइम वी रीच। बट हाँ, इसमें तकलीफ नहीं बताऊंगी मैं, मुश्किलें नहीं बताऊंगी मैं, बिकॉज मुझे तो बहुत मज़ा आया इनके साथ अभी काम करते हुए, क्योंकि ये सब अच्छे चैलेंजेस हैं
जी,
बिकॉज दीज हेल्दी चैलेंजेस हेल्प अस ग्रो एज आर्टिस्ट, आई ट्रूली बिलीव दैट वे, सो डज शिखा जी भी। तो इनको नए गानों को सीखने के जैसे जिस जोश के साथ हम सीखते हैं उसी तरह हमने अडेप्ट किया अपने आप को, और धीरे धीरे ऐसे पाते गए कि हम भी उसी उनकी ही कथा में बहते गए। हमने शुरू तो किया साउथ से, लेकिन अभी तो हम उत्तर की तरफ बह रहे हैं।
बिल्कुल, मेरा मुश्किलें आने की बात यही थी कि एक शैली से दूसरी शैली में जाने के लिए, तो बिल्कुल आपने कहा कि मुश्किलें तो उसको मुश्किल नहीं कहेंगे क्योंकि उससे तो एक अलग ही एक सुख की प्राप्ति होती है। ये अवश्य जानना चाहूँगी आपसे कि एक सात सुरों की बात की आपने, क्यों होता है कि कोई राग तो बहुत आसान है और कोई राग जो है वो बहुत मुश्किल है, क्या हो जाता है? सुर तो वही है।
दिलचस्प सवाल है ये। इसका मैं हमसे ह्यूमन नेचर से कंपैरिजन करूँगी। कैसे बताएं, तो आप पाएंगे कि आप किसी को मिलते हैं, कोई भी होगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत पहचाने हुए हैं, आपको ऐसे लगेगा कि यू नो देम ऑलरेडी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम बिफोर, आपने उनसे कभी मिला नहीं होगा बट उस मुलाकात के बाद यू विल फील आप बहुत कंफर्टेबल विद देम एंड यू मे यू नो गेट अलोंग वेरी वेल। बट यही चीज़ कुछ लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है, फिर थोड़ा मुठभेड़ होता है, फिर देन समटाइम्स वी गेट अलोंग एंड समटाइम्स वी डोंट, लाइक दैट। हर बार मैं अपने आप को यही समझती हूँ, मैं हर राह को जब उठाती हूँ सीखने के लिए तो मैं उसके साथ दोस्ती करने का प्रयास करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं अपने आप को अपने दिमाग तन मन धन सब कुछ खुला रखूँगी उतना वो मेरे पास आने की कोशिश करेगा, मैं भी उसकी दोस्त बनने के लिए आई विल बी मोर सक्सेसफुल दैट वे इफ आई कीप माई सेल्फ ओपन। सो आई फाइंड माई सेल्फ दैट जितना हम परिचित हों उतनी वो हमसे दोस्त बन जाती हैं और हमें थोड़ी सी अपनी दुनिया में एक छोटी सी जगह देती हैं जिनमें उनकी झलक मिल जाती है। उसके बाद तो गुरु की कृपा है, बिकॉज और भी कॉम्पोजिशंस तो बहुत ज़रूरत है सीखने की। कॉम्पोजिशन से ही राग के और भी लक्षण समझ में आएंगे और भी गाते गाते जा सकते हैं
जी। वो तो कोई नहीं, और आपने कहा कि किसी से मिलकर जो वो एक भाव आता है वही संगीत की दुनिया या नृत्य की दुनिया आपको एक दूसरे से जोड़ देती है। और यहाँ मैं ये कहूँगी कि आपके साथ हम जुड़ गए हैं, लेकिन हम पूरी तरह से तभी जुड़ेंगे ना जब हम आपकी और आपकी कला का कुछ अनुभव करेंगे। आपसे अगर मैं शिखा जी बात करूँगी तो हम सभी जानते हैं कथक के घरानों की बात होती है, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और एक नया घराना जो बनारस घराना की भी हम सुनते ही हैं, बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा हर एक की एक अपनी शैली है जी। अगर जयपुर घराना, मैं हो सकता है कुछ गलत भी बता जाऊँ, जयपुर घराना जैसा मैं जानती हूँ वो रिदमेटिक लय के ऊपर है और लखनऊ घराना अभिव्यक्ति के ऊपर है, बनारस घराना मुझे नहीं मालूम। जी
ठीक है। अनीता जी, बनारस घराना नया नहीं है, बहुत पुराना घराना है
जी।
जी उतना ही पुराना जितना, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, शिव की जटा से गंगा का आना। नया घराना जो अभी चौथा आ रहा है वो है रायगढ़ घराना, जिसकी बात अच्छा। हम शायद कुछ दिनों में सुनने भी लगेंगे, पढ़ने भी लगेंगे, कार्य चल रहा है, प्रगति पर है
जी।
शुरुआत वहां से होती है और ये बहुत ही, जब हम किताबों में भी पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन, ये प्रश्न कोई अपने नज़रिए से देखकर उसका उत्तर देता है, कोई अपने नज़रिए से। लोग कहते हैं कि पहले उत्तर भारत में ही पदार्पण हुआ कथक का राजस्थान में, कुछ कहते हैं लखनऊ में हुआ और कुछ कहते हैं बनारस। हमारे गुरुजी ने हमें ऐसा समझाया कि नृत्य करती हुई गंगा जब नीचे आई तो अविरल बही, सब जगह बही, और जब लखनऊ की तरफ गई तो नवाबी अंदाज था उसका। तो जब नवाबी अंदाज है तो समझिए अभिव्यक्ति और सुंदरता चरम पे थी कि चेहरे से ही, अदा से, एक से सलाम कर लेना। बहुत सारे नवाबों के वो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। फिर वहां से वो विद्या राजस्थान आई या राजस्थान से नवाबों पे गई। अब आते हैं राजस्थान की तरफ, चित्तौड़, महाराणा प्रताप, घोड़ों की टापे, ये सुनाई दिया,
अपने आप ले आ गई
जी, तो रस हो गया वीर
जी।
तो हम श्रृंगार रस की से तरफ आ गए वीर रस की तरफ। फिर वो बहते बहते बनारस की तरफ गई, अब वो नहीं पता पहले इधर या उधर, हम चलते हैं बनारस की तरफ
जी।
बनारस में उछाल बहुत है, गंगा उछलती हुई आती है वहां और बहुत, और फिर एकदम शांत हो जाती हैं वहाँ। कृष्ण और शिव का भाव बहुत तेज देखेंगे, लोग कहते हैं कि हम मुक्ति पाते हैं काशी जाकर। तो बनारस का घराना वो घराना है जहाँ हम मुक्ति पाते हैं
और जहाँ लय भी है और जहाँ पर अभिव्यक्ति भी है।
लय रिदम वो चलती रही, घुंघरों की आवाज चलती रही,
और
रसों में बांट देती हूँ तो शायद ज्यादा सिंपल हो जाएगा कि श्रृंगार रस से वीर रस से होते हुए हम वापस चले नीचे की तरफ जहाँ हमें भक्ति रस की चरम मिली, जहाँ शिव को सब कुछ समर्पित किया, कृष्ण को समर्पित किया
जी।
और फोक डांस से, हर क्लासिकल डांस हाथ से जुड़ के चलता है
बिल्कुल,
तो कथक, हाँ जी कथक पूरा एक इतना बड़ा समुद्र है कि उसमें गोते लगाते जाएं और मोती मिलते ही जाएंगे। पर जब हम सीखते थे तो गुरुजी हमें जैसे कहते हैं ना नगेट्स ऐसे देते थे कि जो खा के पचा भी लें, समझ में भी आसानी से आ जाए और उसे हम पोट्रे भी कर सकें और बच्चों को आगे सिखा भी सकें।
जी तो इन सब में हमने अभिव्यक्ति की भी बात कर ली, लय की भी बात कर ली, तो लय और अभिव्यक्ति मेरे सामने हैं, तो क्यों ना अभी कुछ हमारे लिए
बिल्कुल बैठक भाव दिखाती हूँ ऑफ कोर्स कल्पना जी की आवाज़ पे। और एक ये वही भजन है जो हम अभंग राम में भी प्रस्तुत करेंगे।
मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारण धीर अजे। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारण धीर अजे। तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान रि जय राम श्री राम जय राम रमा रमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम महि मंडल मंडन चारु तरंध्रित सायक चाप निशंग बरम जय राम श्री राम।
वाह शिखा जी एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी कि कथक क्या सिर्फ लड़कियों के लिए होता है? ऐसा नहीं है,
बिल्कुल नहीं है।
एक धारणा सी बन जाती है,
शायद वो एक लड़ाई है अंदर की, क्योंकि हमने सीखा हमारी गुरु, खैर मेरी गुरु श्वेता गर्ग मैम, हमारे साथ जो सब बच्चे सीखते थे उसमें बहुत मेल थे। जयपुर घराने के एपिटोम की बात करूँ तो पंडित राजेंद्र गंगानी जी मेल हैं, बिरजू महाराज जी पूरी दुनिया उन्हें जानती है समझती है मेल थे, ऐसी कोई वो बात नहीं है। शिव ने तांडव किया क्योंकि उन्होंने तंडू ऋषि से सीखा, इसलिए शिव के द्वारा नाचा गया नृत्य कहलाया तांडव। रास नाचे कृष्ण, रास में मेन हीरो तो कृष्ण ही थे, मेल थे, उसे स्वयं देखने शिव आए थे लड़की का रूप धारण कर।
जी
तो जब इन्होंने जिन्होंने ये विद्या आगे दी है जब इन्होंने फर्क नहीं किया तो हम कब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे?
जी ये सीमाएं हमारी अपनी बनाई हुई हैं। एक प्रस्तुति और कर सकेंगे हमारे लिए? मन नहीं भरा हमारा। कुछ लय और कुछ अभिव्यक्ति
तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे ही शो का मंगलमय श्री राम कहानी, जिससे ये पूरा म्यूजिकल शुरू होगा और समाप्त होगा।
जी
मंगलमय श्री राम कहानी, मंगलमय श्री राम कहानी, सुनत पढ़त समझत बढ़ ज्ञानी, सुनत पढ़त समझत बढ़ ज्ञानी, मंगलमय श्री राम कहानी, मंगलमय श्री राम कहानी।
वाह आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और आपकी जो नृत्य नाटिका है उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ।
धन्यवाद अनीता जी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।